हमने आपको फ्राइडे को बताया था कि कुछ जो यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं उनमें से कुछ कंट्रीज जो हैं उनके तैयारे जो हैं वो जरा चाइना की वो जो है वहां पे एयर स्पेस के पास, नॉट रियली इनसाइड लेकिन उसके पास जो है वो कर रहे हैं, और बड़ा उन्होंने बुरा मनाया है कि चाइना के एकदम तैयारे आ जाते हैं और हमको एकदम से जो है मुड़ना पड़ता है, तो कोलिजन हो सकते हैं, वो हो सकता है. अच्छा जी, आज जो है ये खबर जब आई थी तो जाहिर है ट्रूडो साहब ने बड़ा रिएक्शन दिखाया. ट्रूडो साहब ने कहा कि ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है जो कुछ चाइना कर रहा है. तो अब भाई आप चाइना के खिलाफ बोलेंगे तो चाइना तो चुप नहीं बैठेगा. तो आज जो है चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन जाओ लीजियन, उन्होंने कहा है जी कि जो कुछ कनाडा कर रहा है ये इंतहाई से ज्यादा प्रोवोकेशन हम इसको समझते हैं, क्योंकि आप कहते हैं जी कि हम अंडर यूनाइटेड नेशंस लॉ जो है वो हवा के अंदर और सी के अंदर और वो जहां पे के जो इंटरनेशनल वाटर्स या इंटरनेशनल एयर या इस तरह की जो चीजें हैं जिनको कंसिडर किया जाता है, तो वो कहते हैं जी कि ये जरूरी नहीं है कि हर चीज जो यूनाइटेड नेशंस आपको कह रही है तो आप जो है मिलिट्री सर्वेलेंस इस नाम पे कि जी हम जो है नजर रखे हुए किसी और के ऊपर तो आप दूसरे कंट्री की जो है एयर स्पेस को वायलेट करें और आप जो है हैरेस कर रहे हैं हमारे पेट्रोल एयरक्राफ्ट्स को. तो क्योंकि कनाडा ने कहा था लास्ट वीक कि चाइना जो है हमारे एयरक्राफ्ट्स को हैरेस कर रहा है, वो कह रहे हैं नहीं आप कर रहे हैं, और जब जब हमारी एयर स्पेस के पास से कोई गुजरेगा हम डेफिनेटली अपने तैयारे जो है उड़ाएंगे देखने के लिए कि कोई हमारे एयर स्पेस में एंटर होने की कोशिश तो नहीं कर रहा. तो मतलब है ये दोनों तरफ से जो हैं अब एक्यूजेशंस हैं, और अब इसमें पता नहीं है कि क्या बात है, लेकिन जाहिर है कि ये इन्होंने इसलिए जो है ये इन कुछ कंट्रीज ने ये जो नेटो के जो एलाइज हैं इन्होंने उड़ाए थे. ये कहते थे कि नॉर्थ कोरिया जो है अपना बहुत ज्यादा असर वहां पे बढ़ता चला जा रहा है, और हमने चूंकि उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं और वो बुलिस्टिक मिसल्स भी के भी कर रहा है सारे एक्सपेरिमेंट्स और दूसरे भी, तो हम उसको बताना चाहते हैं कि वी आर हियर इन द रीजन, तो तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी. तो चाइना ने कहा जी कि आप दूसरे को कहने के लिए यूनाइटेड नेशंस का नाम लेके हमारी आप जो है इलाके के अंदर मतलब नजर नहीं आने चाहिए. तो ये काफी जो है यहां पे रिएक्शन आया,
दोनों ने एक दूसरे पर उंगलियां उठाई हैं.
हाँ, दोनों ने एक दूसरे पर उंगलियां उठाई हैं. अच्छा जी, ये माजिद भाई ने आपको थोड़ी सी डिटेल्स बताई हैं कि वीकेंड के ऊपर हमारे जो ट्रूडो साहब हैं और भी बहुत सारे डिग्निटरीज, ये जो अफसल फैमिली है, ये जो लंदन में जिनका एक साल पहले जिनको के पूरी फैमिली को एक फनेटिक जो है उसने आके ट्रक मारा था जबकि ये लोग फैमिली उसके ऊपर इवनिंग वॉक पे थे. इसमें थे सलमान अफजल 46 इयर्स उनकी एज थी, उनकी वाइफ मदीहा सलमान 44, डॉक्टर युमना जो कि 15 साल की थी, ग्रैंड मदर तलत अफसर 74 इयर्स की थी. तो वो ट्रक ने जब मारा तो उनकी डेथ हो गई. उनका जो एक बच्चा था 9 साल का वो सर्वाइव कर गया था. तो उसके ऊपर फिर से एक दफा कम्युनिटी ने और सब ने कहा है कि ये जो रेसिज्म और इस्लामोफोबिया इसको खत्म करने की जरूरत है. ट्रूडो साहब ने एक दफा से फिर बड़े अफसोस का वाकया जो है यहां पे इसको दोहराया और उसको मौन किया, और उसने कहा कि इस तरह के जो हेट्रेड और जो टेररिज्म है, क्योंकि उसको उस वक्त टेररिज्म कहा गया था उस वाकये को, तो इसकी कोई जगह नहीं है हमारे उसमें. ये जो इवेंट हो रहा था, ये जो यमुना वो जो बच्ची थी वो जिस हाई स्कूल में पढ़ती थी उसके जो है फुटबॉल ग्राउंड के अंदर हो रहा था, और जो है वहां पर उन्होंने कहा जी कि हम पूरे स्टेप्स ले रहे हैं इस चीज को खत्म करने के लिए. बल्कि आज लाइक ऑन मंडे द कैनेडियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस, बल्कि जो अहमद हुसैन साहब जो हैं उन्होंने भी अनाउंस किया है कि हम एक स्पेशल एक चेयर या के एक कुछ जो है वैकेंसीज क्रिएट कर रहे हैं टू फिल अप फॉर दोज रिप्रेजेंटेटिव्स जो जो इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट कनाडा में काम कर सकते हैं. तो
वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेंगे,
प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेंगे, तो वो जनाब वो ऐसे कर रहे हैं. अच्छा, इसके अलावा जो हमारे ऑन्टेरियो के प्रीमियर एंड डकफोर्ड साहब, उन्होंने भी आज बहुत ज्यादा अफसोस का इजहार किया, और उन्होंने कहा जी कि ये चीजें जो हैं ये अगेंस्ट हैं कैनेडियन वैल्यूज, और ये बिल्कुल जो हैं ये अफजल फैमिली जो है उनकी हम उनको ऑनर करते हैं, वो हमारी मेमोरी में है, और मुसलमान जो है उनका एक उस मुस्लिम कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा यहां पे हमारे मुल्क के अंदर एक हिस्सा है, और ये रेसिज्म और हेट्रेड जो है इसको हम बिल्कुल इस अपने स्पेशली सूबे में ऑन्टेरियो के अंदर कोई जगह नहीं लेने देंगे. और उन्होंने कहा कि ये वो सूबा है जहां पे इनफैक्ट उन्होंने कंट्री का ही कहा कि ये वो कंट्री है कि जहां पे हर कोई अपने फेथ के मुताबिक जो है जिंदगी गुजार सकता है. तो सबने जो है लीडर्स ने बड़ा कंडेम किया और अफसोस का भी इजहार किया. मेन स्ट्रीट जो रिसर्च है जी उसका फिर एक आज आ गया. आपको पता ही हमने बताया था थोड़े दिन पहले स्टैट्स कैनेडा की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि बहुत सारे कैनेडियंस जो है अब उनके पास फिर से पैसे नहीं है कि वो अपना फूड खरीद सके बिकॉज ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन. नैनोज का जो ये अब आज सॉरी मेन स्ट्रीट का जो आज ये आई है रिसर्च आई है, इसमें उन्होंने कहा जी कि राइजिंग कॉस्ट और जो ये है इन्फ्लेशन, उसकी वजह से जो बेसिक्स हैं, जो बेसिक फूड है लाइक पास्ता एंड ब्रेड एंड मीट, उसकी प्राइस इतनी ऊपर चली गई है कि जो फूड बैंक्स ऑफ कनाडा हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा असर आ गया है। वो कहते हैं ज्यादातर इसमें वो लोग हैं जिनकी के जो सैलरी है $50,000 से कम है पर ईयर, और 1 in 5 आर रिपोर्टिंग हंगर। और ये जो उन्होंने सर्वे किया था तकरीबन 4,000 से ज्यादा एडल्ट्स का किया था बिटवीन February 25th एंड March 2, और वो कह रहे हैं कि बिटवीन March 2020 और 2022 के बीच में ये सब जो है लोगों ने कहा कि हमारी ये हालत हो गई थी। ये टेलीफोनिक एक इंटरव्यू था जो इन लोगों से किया गया था, और उन्होंने कहा जी कि दिस इज जो फूड बैंक्स है वो कह रहे हैं कि दिस इज ये जो हंगर बहुत बढ़ गई है, दिस इज 41-year high जो हमारी हिस्ट्री है उसमें सबसे ज्यादा, कभी ऐसे नहीं हुआ था। स्टैट्स कनाडा की जो हमने आपको खबर बताई थी उसमें यह कहा गया था कि 9.7% जो लोग हैं वो कह रहे थे अप्रैल के महीने में कि फूड प्राइसेस उनके लिए जो है बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई हैं मेंटेन करनी, और ये दिस वाज द लार्जेस्ट इंक्रीज फ्रॉम September 1981। तो बस उसके फिर कॉन्टेक्स्ट में वो अब आती जा रही है, और फूड बैंक ऑफ कनाडा अब कह रहे हैं कि जी अब हमारे पास लोगों को
एज द प्राइस ऑफ गैसोलीन एंड द पेट्रोलियम इज गोइंग अप एंड अप एंड अप, वो डायरेक्ट इफेक्ट करता है
सारी चीजों को,
इन सारी चीजों को, ग्रोसरीज वगैरह, बहुत सारी ग्रोसरीज वगैरह जो है वो आती है अमेरिका से, और इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें जो आती हैं वो ईस्टर्न कनाडा से आती हैं, तो वहां से जब लोड करके लेके आते हैं तो दैट्स डायरेक्टली इफेक्ट्स द प्राइस ऑफ ऑल दी गुड्स।
यस दैट्स राइट, ऐसे है। अच्छा जनाब, वीकेंड के ऊपर ये जो 2869 बैटलफोर्ड रोड मिसिसागा जो है वहां पे एक 3-story कॉम्प्लेक्स था टाउन होम्स का, वहां पे आग लग गई थी।
वेरी सैड।
और यस वेरी वेरी सैड। हाँ जी, तो बहुत सारे लोग, अल्लाह का शुक्र है कोई इसके अंदर जख्मी तो नहीं हुआ, हर्ट नहीं हुआ है, लेकिन जो फायर फाइटर्स थे वो इसको बुझाने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि तकरीबन 36 यूनिट्स जो हैं वो चूंकि अफेक्ट हुए हैं तो बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हो गए हैं, और उनको अब कहा गया है कि मेडोवेल कम्युनिटी सेंटर जो है वहां पे आप जाएं और वहां पे आप मेडिसिन फूड उसकी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ये चूंकि अब इसका छत भी जल गया है बहुत बुरे तरीके से, और भी जो एटिक के एरियाज हैं वो काफी ज्यादा इफेक्टेड हैं, तो पता नहीं ये कब तक फिक्स होंगे और कब तक बेचारे ये लोग जो हैं वापस जा सकेंगे, क्योंकि ऑलरेडी भी कोई मतलब है इतना कोई आउटस्टैंडिंग ये वो नहीं है ना हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, जरा थोड़ा सा वो है तो हर्ट किया इसने काफी जो है वो रेजिडेंट्स को, क्योंकि अब जाहिर है हर किसी के पास जगह तो नहीं है अल्टरनेटिव कहीं पे भी जाने की। अच्छा जी, गैस की प्राइसेस 216 तो यहां पे चल रही है ना माजिद भाई, वैनकूवर के अंदर जी दे हैव टच 236.9। ये देखें जनाब, ये गैस की प्राइस 236.9 सेंट्स पर लीटर जो है वहां पे पहुंच गई है, और वो कह रहा है जी कि पहले जो था ये 233.9 सेंट हुआ था पर लीटर, तो हम समझ रहे थे कि ये बहुत ज्यादा हाईएस्ट है इन द हिस्ट्री ऑफ वैनकूवर, लेकिन अब gasbuddy.com ने कहा है कि जो ग्रेटर वैनकूवर की प्राइसेस है वो इसको टच कर रही हैं, और जो है ये आने वाले दिनों में और ज्यादा जो है ऊपर जा सकती है।
कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही कि प्राइस डाउन जाएगी,
जी जी,
बल्कि अप एंड अप, सप्लाई एंड डिमांड का चक्कर है,
जी जी, ये ऊपर जाएगा। ये कुछ या तो पेंडेमिक का असर है या तो कोई और वैसे ही असर है, महंगाई का असर है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो किलिंग्स एंड शूटिंग्स जो हैं इनके बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, बहुत, हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि जाहिर है इकोनॉमिक्स अगर आपकी अच्छी हैं, आप सेटल्ड हैं लाइफ में, तो फिर आप ये हरकतें नहीं करेंगे, वरना फिर जाहिर है वो मेंटल जो हेल्थ के इश्यूज हैं वो आ जाते हैं। नाइजीरिया के अंदर भी जी जो है क्या हुआ है ओवर द वीकेंड, जो है एक संडे को जो है वो एक विजिल, सॉरी वो चल रही थी वर्शिप चल रही थी चर्च के अंदर, तो वहां पे जी एक आदमी ने आके गोलियां चलाई हैं नाइजीरिया के अंदर भी, और वहां पे कैथोलिक चर्च था ये सेंट फ्रांसिस कैथोलिक चर्च, और यहां पे 50 लोगों की उसने जो है वो डेथ उसकी वजह से हो गई है, और अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो अभी तक किसी ग्रुप ने नहीं ली है, लेकिन फिर भी जो कह रहे हैं नाइजीरियन पुलिस जो है हंट कर रही है कि ये कौन लोग थे जिन्होंने आके मारा, वो बेचारे वर्शिपर्स बैठे अंदर वर्शिप कर रहे थे, संडे के दिन जो होता है उसमें आपको पता ही है लोग मस्जिदें को जाते हैं फ्राइडे को जैसे हम लोग, और ये लोग जो है संडे को जाते हैं, तो वो कर रहे थे और ये जो है इस तरह से हुआ है। बांग्लादेश के अंदर भी काफी अफसोस का वाकया हुआ है, वहां पे BM कंटेनर डिपो जो है चिटागोंग के अंदर, उसके अंदर जो है आग लगी है, और इस आग इसकी वजह से जो है तकरीबन 49 लोगों की डेथ हो गई। ये बहुत ही डेवस्टेटिंग आग थी और इसमें 9 फायर फाइटर्स भी जो है बेचारे अनफॉर्चुनेटली उनकी भी डेथ हो गई है और 300 जो है ओवर 300 वो इंजर्ड है और कहा जा रहा है कि वो इंजर्ड में से भी बहुत सी की हालत जो है बहुत ज्यादा खराब है। वो कहते हैं कि ये बांग्लादेश की हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट जो है वो डिजास्टरस ये जो है ये ब्लेज था। इसके अंदर ये डच बांग्लादेश जॉइंट वेंचर एक ये डिपो है, ये सीताकुंडा के अंदर चलाते हैं, तो काफी वैसे तो अदरवाइज ये फैसिलिटीज इसमें थी लेकिन अब देखना ये पड़ेगा कि ये कैसे आग लगी और ये जो है कैसे ये चीजें खराब हुई। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो तो मुझे लग रहा है कि जैसे वो दुनिया के प्रेसिडेंट बन गए हैं, बिकॉज ही इज लाइक कमांडिंग, जैसे हुक्म नहीं होता कि सारी दुनिया को हुक्म देने हैं, वो सारी दुनिया को हुक्म देते जा रहे हैं कि तुमने ऐसे नहीं करना और तुमने ऐसे करना है और तुम ऐसा करो। जैसे पिछले दिनों में अमेरिका को कह रहे थे कि तुमको हमको आर्म्स देने ही पड़ेंगे, वो इतना प्रेशर डाला कि उन बेचारों को कहना पड़ा कि अच्छा चलो जी छोटे मोटे दे देते हैं, फुल फ्लैश वो मिसल सिस्टम नहीं आपको देते। हर किसी के ऊपर एतराज कर रहे हैं। अब क्या हुआ है कि जी इन्होंने एतराज अब कर लिया जी उसके ऊपर, मैक्रों साहब के ऊपर, फ्रेंच जो प्रेसिडेंट है मैक्रों, उसने बड़ी सेंसिबल बात की। जो प्रेसिडेंट मैक्रों हैं फ्रांस के, उन्होंने कहा देखें जी हम जो हैं जब भी कभी ये लड़ाई खत्म होने के पास होगी ना तो हमको अपने डिप्लोमेटिक डोर्स ओपन रखने चाहिए पुतिन के साथ बात करने के लिए। ऐसा ना हो कि हम इतना ज्यादा उसको दीवार के साथ लगा दें, उसको इतना रशिया को ह्यूमिलिएट कर दें कि फिर हमारा उसके साथ कम्युनिकेशन करना मुश्किल हो जाए। अच्छा जी इसके ऊपर तो ज़ेलेंस्की साहब बड़ा भड़क गए, उन्होंने कहा ये तो इसके अंदर ह्यूमिलिएशन सिर्फ फ्रांस की है, ये पुतिन की ह्यूमिलिएशन नहीं है और तुम ये कैसे कमेंट्स दे रहे हो जो इतना बड़ा एग्रेसर है और ये है और जिसने के इतना खराब काम दुनिया के अंदर किया है और तुम जो है उसको। तो फिर उसने मैक्रों ने फिर कहा कि हम मीडिएशन की तरफ जाना चाहते हैं, हम इस वॉर को बंद कराना चाहते हैं, हम कहते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट बंद होए, क्योंकि जाहिर है इनकी भी इकोनॉमीज हर्ट हो रही है ना माजद भाई, सारे यूरोप की भी हर्ट हो रही है। तो उसने कहा जी कि हम जैसे मुशर्रफ साहब को कहा था अमेरिका ने सब कुछ बंद करो अफगानिस्तान के साथ, तो मुशर्रफ ने कहा कि नहीं वी विल कीप वन विंडो ओपन। तो फिर उसका फायदा सबको ही हुआ, इन सबको हुआ। फिर जब बात करनी थी पाकिस्तान को कहा हाँ जी अब बात करो जी अब इनके साथ तालिबान, तो दैट्स व्हाट ही सेड कि वी शुड कीप आवर डोर्स ओपन और इतना भी ह्यूमिलेट ना कर दो कि वो अपने दिल पे ले ले और वो कह जी अच्छा ठीक है खली वली कोई बात नहीं कर रहा अब मैं तुमसे ना। तो उसके लिए तो जी ये इन्होंने जी उनको बड़ा आज खींचा है ज़ेलेंस्की साहब ने। और इनकी जो यूक्रेन की फॉरेन मिनिस्ट्री के जो डिमिट्रो कुबेला हैं उन्होंने भी कहा है कि ये इनके जो कॉमेंट्स हैं बिल्कुल अनवॉरेंटेड और अनकॉल्ड फॉर हैं। कीव जो है जी अब इधर भी यूक्रेन के अंदर भी दो अलग अलग हैं। कीव के अंदर जी जो यहां पे कुछ इलाके हैं उनके मेयर कह रहे हैं कि रशिया ने अपनी बम्बार्डमेंट बेतहाशा बढ़ा दी है और तकरीबन ये सारा ही इलाका जो है ये इनके कब्जे में आ गया, खासतौर पे ईस्टर्न का जो कीव का इलाका है या यूक्रेन का इलाका है वो बैटलफील्ड बिल्कुल बहुत ज्यादा बना हुआ है। 20% स्ट्रेटेजिक गेन्स हैं इनके जो ये इलाके हैं सेवरन डॉन्स के और बाकी के इलाके हैं। अच्छा उसमें मॉस्को ने यह भी कहा है कि जी अब ये इन्होंने रिट्रीट शुरू कर दिया यूक्रेन की फोर्सेस ने, यूक्रेन कह रहा है कि रशिया को हम डिफीट दे रहे हैं और रशिया पीछे हट रहा है। तो अब ये समझ नहीं आ रही हकीकत क्या है पता नहीं है कि कौन पीछे हट रहा है। बहरहाल ये दोनों तरफ से जो है ये लुहांस के एरिए में और ये सारी जगहों पर काफी लड़ाई हो रही है, रशिया कह रहा है जी हमारे गेन्स हो रहे हैं, यूक्रेन कह रहा है कि हम इसको डिफीट करके पीछे कर रहे हैं। वीकेंड के ऊपर जनाब साउथ कोरिया और जो सॉरी नॉर्थ कोरिया जो है उसने काफी सारे फिर से मिसल्स जो हैं उनके टेस्ट किए, तो आज मंडे को साउथ कोरिया और यूएसए ने जो है काउंटर जो है वो मिसल्स के वो किए टेस्ट किए, यानी टेस्ट क्या किया छोड़े जरा बताने के लिए कि जी वी आर रेडी वी आर वॉर रेडी। और ये जो था साउथ कोरिया से इन्होंने किया था और ये सरफेस टू सरफेस मिसल्स थे जो कि इन्होंने किया। आपको पता ही है कुछ दिनों से जो नॉर्थ कोरिया है वो भी काफी सारे मिसल्स के वो कर रहा है टेस्ट कर रहा है। तो यॉन हैप न्यूज एजेंसी जो है साउथ अफ्रीका की, उसने साउथ कोरिया की मिलिट्री को कोट करते हुए कहा है कि ये जो है यूएसए और साउथ कोरिया उन्होंने भी ये डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की है, हाँ ये डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की है कि हम भी रेडी हैं और अगर तुमने हमें स्ट्राइक किया तो हम भी प्रिपेयर्ड हैं इस चीज के लिए और केपेबल हैं। साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं यून सुक योन जो कि अभी बने हैं प्रेसिडेंट नए बने हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये जो नॉर्थ कोरिया जो कुछ भी कर रहा है ये बिल्कुल जो है वो ठीक नहीं है और ये वैसे तो कह रहे हैं कि जी हम जॉइंट ड्रिल्स कर रहे हैं, तो हम भी जॉइंट ड्रिल्स कर रहे हैं यूएसए के साथ। तो अब पता नहीं ये इसमें भी क्या सच्चाई है, अब कौन किसको क्या बताना चाहता है। बहरहाल ये है, ये अभी आपने माजिद भाई बताई है यूएसए के अंदर जो वीकेंड के ऊपर ये मारामारी चलती रही, तो मैं जरा थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज ये पूरी जरा टाइमलाइन निकाली है कि पिछले जो है जो थोड़े से दिन हैं उसके अंदर क्या कुछ हुआ है। वो कहते हैं जी 156 डेज जो हैं उनके अंदर ओवर 200 जो हैं मास शूटिंग्स हो चुकी हैं। जो इस वीकेंड पे थी उसमें जो एक शूटिंग हुई है ये पेंसिल्वेनिया में, उसमें 15 लोगों की डेथ्स हुई हैं और 60 जो हैं वो हो गए हैं, जख्मी हो गए हैं। एट स्टेट्स में हुए हैं। पेंसिल्वेनिया में क्या हुआ है कि वहां पे 3 लोग जो हैं उनकी गन फायर से डेथ हो गई है, 11 वुंडेड हैं। इसी तरह चटंगुआ के अंदर जो है ये नाइट क्लब का एरिया बड़ा अप मार्केट किस्म का, वहां पे शूटिंग हुई है, 3 लोगों की डेथ हुई है, 14 इंजर्ड हैं। साउथ कैरोलिना में हुआ है, 8 लोग जो हैं वो देवर किल्ड इन यू नो ड्यूरिंग अ ग्रेजुएशन पार्टी, और इसके अंदर जो है कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। इसके अलावा फीनिक्स स्ट्रिप मॉल के पास जो है वहां पे कुछ लोगों की 14 लोगों की डेथ हुई है, 8 लोग इंजर्ड हुए हैं। इसके अलावा शूटिंग्स होती रही वीकेंड पे टेक्सास, जॉर्जिया, न्यूयॉर्क सिटी और मिशिगन में। तो वो कहते हैं जी कि ये मैस शूटिंग्स दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं।
एंड देयर आर मैस शूटिंग्स ऑफ 200 इन ओनली 2022, अभी 6 महीने गुजरे हैं।
जी अभी सिर्फ 6 महीने गुजरे हैं और 200 जो हैं वो डेथ्स हो चुकी हैं। तो
200 इंसिडेंट्स
हो चुके हैं,
200 इंसिडेंट्स हुए हैं। और मैस शूटिंग इज व्हेन 4 पीपल और मोर डाइज तो ये 200 जस्ट इमेजिन 200
ये जो लोग हमारा देख रहे हैं हमारा टीवी, उनको ये ग्राफिक भी नजर आएगा एक जो हमने आपको दिखा रहे हैं, तो आप ये देखें जरा। तो इसमें ये फिर से एक दफा से ये आ गई है सारी डिबेट के जी आप अब गन अब भी कंट्रोल करने हैं कि नहीं करने। लास्ट वीक हमने आपको बताया था कि बाइडन साहब ने अपील की थी कि भाई आप लोग प्लीज इसके ऊपर कुछ करें, तो अभी तक जो है वो बिल पास नहीं हुआ है, तो जो है उसकी काफी मुखालफत भी की गई थी, तब देखेंगे क्या होगा। अच्छा जनाब, एलॉन मस्क साहब जो है उन्होंने कहा जी कि मैं ट्विटर की डील से मैं वापस आ जाऊंगा अगर आपने वो ना किया जो मैं आपको कह रहा हूं। अच्छा अब ये क्या कह रहे हैं, आपको पता ही है कि ये सीईओ है टेस्ला और स्पेस एक्स के। इन्होंने एक लेटर इनके जो है इनके लॉयर्स जो है उन्होंने लिखा है और उन्होंने कहा जी कि ये जो 44 बिलियन यूएस डॉलर की बिड टू बाय ट्विटर है वो नहीं ये आगे लेकर जाएंगे। अगर ये जो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं जो कि इनको चाहिए इवैल्यूएट करने के लिए बिफोर इट बायस, कि ये जो इसके 229 मिलियन अकाउंट्स हैं ये फेक हैं कि नहीं।
Exactly, that's what I was waiting for you to say. क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी और उसके अंदर हमने तो छोटी जगहों पे सुना है कि भाई वहां पर फेक अकाउंट्स बना लेते हैं, है ना। जस्ट इमेजिन कि इनके 220 मिलियन जो फॉलोअर्स हैं ट्विटर के, उसमें पता नहीं कितने मिलियन जो है वो फेक है अकॉर्डिंग टू एलन मस्क। वो कह रहे हैं कि भाई ये तो फेक अकाउंट्स हैं, तो मुझे तो मुझे पता लगे, प्रूफ करो कि ये सही है, तो मैं तो उनको दूंगा ये 43 बिलियन डॉलर्स। इफ दे आर फेक्स देन द वैल्यू इज वेरी हाई दैट आई एम पेइंग यू, नो इसको फिर इस पे वैल्यू पे डिस्कस
करेंगे। हाँ जी, लेकिन जब ये 44 बिलियन भी जब इन्होंने अनाउंस किया था तो आपको पता ही है उसमें भी लोगों ने कहा था इतनी बड़ी कंपनी है ये भी पैसे बहुत कम है। तो अब वो कह रहा है अच्छा ठीक है पैसे कम है तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि असल में अकाउंट्स कितने हैं, तो ये जब तक मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी मैं नहीं इसको बाय करूंगा।
सही?
तो आप मुझे बताएंगे तो फिर तो उसकी, अब ये जब से खबर आई है तो आज मंडे के दिन जो है अब ट्विटर के जो शेयर्स थे वो टंबल कर गए हैं
36 डॉलर्स पर शेयर।
यस, तो वो नीचे आ गए हैं सारे, तो ऐसे है। अच्छा माजिद भाई, ये भी आपने थोड़ी सी खबर बताई है अभी, ये जो बोरिस जॉनसन है यूके के प्राइम मिनिस्टर, ये इनका आज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था वहां पे पार्लियामेंट के अंदर। असल में ये जो पिछले दिनों में आपको पता ही है, हम आपको सारी खबरें बताते रहे हैं कि ये जो पार्टी गेट स्कैंडल चल रहा था जिसके के ऊपर ये और इनकी जो कैबिनेट के मेंबर्स थे कॉन्स्टेंटली पार्टी कर रहे थे और बाकी कौम को कह रहे थे कि नहीं कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शन जो है तुम लोग फॉलो करो और खुद ये फॉलो नहीं कर रहे थे। अच्छा ये जो इनके टोटल कंजर्वेटिव सीट्स हैं पार्लियामेंट में वो हैं 259 में से वैसे तो इनको 180 वोट्स चाहिए थे लेकिन इनको मिले 211। लेकिन फिर भी जो ग्लेरिंग बात है इसके अंदर कि 148 जो कंजर्वेटिव लॉ मेकर्स हैं दैट इज अ ह्यूज नंबर, अभी भी दे आर अगेंस्ट हिम।
अगेन शाजी जी, द सरप्राइजिंग पार्ट इज दैट 148 ऑफ देम आर फ्रॉम एमपीज ऑफ टोरीज।
जी मैं कह रही हूँ कंजर्वेटिव। जी जी, तो ये यही कंसर्न है कि 148 कंजर्वेटिव एमपीज अभी भी अगेंस्ट हैं इनके।
हाँ,
तो अगर ये इन्होंने जीत भी लिया है, लेकिन अब वो सारे क्रिटिक्स कह रहे हैं कि इनके डेज नंबर्ड ही हैं अब तो. लेकिन वो कहते हैं जी बड़े कंजर्वेटिव, बड़े करिज्मेटिक पर्सनालिटी.
आई डोंट थिंक ही इज गोना गो एनीवे, बिकॉज इसके बाद कोई इनको कह नहीं सकता कि आप दोबारा से रेफरेंडम कराओ या दोबारा से आप वोटिंग कराएं या कुछ कराएं, क्योंकि दिस इज इट.
मजद भाई पाकिस्तान से इम्प्रेस होके वो हॉर्स ट्रेडिंग करवा लें हैं.
हाँ.
है ना, अपने साथ बंदे शंदे मिला लें.
हाँ.
और फिर कहें ये नहीं हमको
आप
चाहिए.
ये नहीं समझती कि इसमें बंदे मिले होंगे?
हाँ मिले होंगे. लेकिन हो सकता है ज्यादा मिल जाएं. है ना,
देख लें अब सब.
अब ये होगा तो बहरहाल वो कहते हैं जी ये ज्यादा अब इसके दिन नहीं है. हालांकि ये बड़ी करिज्मेटिक पर्सनालिटी है और बड़ा ये जाके बड़ी जबरदस्त स्पीचेस करता था और ये जो थी कंजर्वेटिव पार्टी बिल्कुल ही बस थक हार रही थी, लेकिन इसने फिर से उनको यूनाइट किया और फिर बड़ा जितनी बड़ी मैसिव विक्ट्री लेके आया था ये उसके अंदर. लेकिन अब इसकी पॉपुलैरिटी डुंडल होती जा रही है,
क्योंकि आप देखें जब ये क्वीन का, हमारी क्वीन का जब प्लैटिनम वो हो रहा था जुबली का
सेलिब्रेशन,
उसमें जब बोरिस जॉनसन साहब वहां पर आए तो लोगों ने बू किया
बहुत ज्यादा. या
पॉपुलैरिटी फ्रॉम देयर.
या बिल्कुल. तो वो कह रहे हैं कि अब इनके ज्यादा दिन नहीं है यहाँ पे. अच्छा जी, आरफा बाजी ने ये थोड़ी सी टच की है खबर, तो हम आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल्स दे देते हैं. हुआ क्या है इंडिया के अंदर, क्या हुआ है कि दो जो बीजेपी के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने, अब मैं वो वर्ड्स नहीं रिपीट करूंगी जो उन्होंने अपने प्रोग्राम्स के बीच में नाउज़बिल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो है बड़ी गुस्ताखी की, और उनको रिपीट नहीं करना चाहिए और मैं करूंगी भी नहीं. तो वो अगर आपने प्रोग्राम देखा है तो आप समझ ही रहे होंगे कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूं. और उन्होंने ये सारी जो डिस्कशन थी ये चल रही थी वही जो ज्ञान व्यापी जो मस्जिद है और बाकी की जो मस्जिदें हैं और उसमें हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में ये चल रही थी. अच्छा जी, उसके अंदर ये जो इनके दो ऑफिशियल्स हैं, एक तो नूपुर शर्मा और एक नवीन जिंदल, उन्होंने ऐसी बात की कि अब दुनिया भड़क गई उसके ऊपर, खासतौर पे मुस्लिम वर्ल्ड. तो बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज ने, यूएई, कतर, बहरेन, यूएई, सऊदी अरेबिया, इन सब ने कहा कि ये जो कुछ भी हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है और इसको जो है खत्म करने की जो है वो जरूरत है. ये खामखाई एक हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी 2014 में मोदी जी की जो आई है उसकी वजह बाद से जो है मुसलमानों के खिलाफ बहुत ज्यादा जो है वो मोर्चे भी निकाले जा रहे हैं और उनको जो है बिल्कुल दीवार से लगाया जा रहा है. अच्छा, इसमें जो हुआ क्या है बेसिकली कि इन कंट्रीज ने तो बहुत ज्यादा कंडेम किया ही और इंडियन एम्बेसडर्स को बुलाया और उनको कहा कि भाई तुम्हारे मुल्क में क्या हो रहा है. ओआईसी जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल जो है, उसने भी जो है वो बुलाया इनको और जो है जो इंडियन ऑफिशियल्स जो है उनके नोटिस में ये वो बात लेकर आए. उन्होंने कहा जी कि ये जो कॉमेंट्स हमारे प्रॉफिट के बारे में किए हैं पीस बी अपॉन हिम वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल हैं और ये जो है एक सिस्टमैटिक प्रैक्टिस अब आपके मुल्क में मुसलमानों के अगेंस्ट चल रही है. अच्छा जी, इंडिया की जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसने इसका जवाब दिया बड़े मुअद्दबाना तरीके से, और वो मुअद्दबाना मैंने वर्ड क्यों यूज किया क्योंकि आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी और क्या हुआ है. मुअद्दबाना तरीके से उन्होंने कहा जी कि आपके ये जो कमेंट्स हैं ये अनकॉल्ड फॉर हैं क्योंकि ये कमेंट्स जो हैं फ्रिंज एलिमेंट्स ने दिए हैं. उसके ऊपर रिएक्शन फर्दर फिर आया कि ये फ्रिंज एलिमेंट्स कैसे हैं, ये फ्रिंज एलिमेंट्स नहीं है, ये तो बीजेपी के हिस्सा है. तो अच्छा, उसके ऊपर फिर से उन्होंने वजाहत देते हुए कहा कि चूंकि इन्होंने गलत बात की थी और हिंदुस्तान या कि बीजेपी की जो पार्टी है वो इस तरह की कोई जो डिसहार्मनी की बात करता है सोसाइटी में उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं, एज अ रिजल्ट हमने इनको फौरन निकाल दिया है अपनी पार्टी से. उस पे कतर ने कहा कि हम हिंदुस्तान को कहते हैं कि इनकी गवर्नमेंट एक पब्लिक अपॉलोजी डाले, अगर आपने नहीं डाली तो हम ये आपका जो एक्शन है इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. इसके अलावा अरब कंट्रीज के अंदर ये अब कहा गया है कि भई ये जितने भी इंडियन जो सामान है इसका आप बॉयकॉट करें. अच्छा, इसके साथ साथ क्या हुआ है कि जो ग्रैंड मुफ्ती ऑफ उमान हैं उन्होंने कहा है कि ये जो कुछ हो रहा है ये वॉर की तरफ जा रहा है, जो मोदी जी की गवर्नमेंट के अंडर हो रहा है ये वॉर की तरफ जा रहा है. अल अजहर यूनिवर्सिटी और मॉस्क जो है उसने कहा है कि ये दिस इज रियल टेररिज्म जिसके के अंदर जो है ये इंडिया आता जा रहा है और ये बड़ी ही खतरनाक चीज है बिकॉज दीज थिंग्स लीड टू डेडली वॉर्स. जॉर्डन ने भी बहुत ज्यादा इसको कंडेम किया. अच्छा, जहां अरब कंट्रीज को बड़े प्यार से हिंदुस्तान ने जवाब दिया कि जी हम उसके ऊपर हमने एक्शन भी लिया है और हम जो है बड़ा उसके ऊपर डिपेंड, हमारी ह्यूमन राइट्स भी बड़ी अच्छी हैं और हम फेथ बेस्ड जो हैं वो कम्युनिटीज को फ्लरिश होने का मौका देते हैं, क्योंकि उसकी वजह क्या है, उसकी वजह हम आपको बता देते हैं कि हिंदुस्तान की जो ट्रेड है ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स में स्टैंड करती है और ये इनके साथ जो अरब कंट्रीज हैं उनके साथ, और इसी तरह हजारों ही मिलियंस ऑफ पीपल जो इंडियंस हैं वो अरब कंट्रीज के अंदर जो हैं वो काम करते हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर्स के वो रेमिटेंसेस भेजते हैं इंडिया को। तो इसलिए हिंदुस्तान जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता अरब कंट्रीज के साथ बिगाड़ना। अच्छा, अब उनको तो ये जवाब दिया जिस वक्त, क्योंकि वैसे हम आपको बता दें कि 14% जो है पॉपुलेशन है इंडिया की मुसलमानों की, इंडिया में मुसलमानों की, जो कि कंसिडर की जाती है कि विच इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी इतनी बड़ी पॉपुलेशन मुस्लिम कंट्रीज में भी मुसलमानों की नहीं है जितनी है। अच्छा, अब जबकि पाकिस्तान ने इसके ऊपर रिएक्शन शो किया, पाकिस्तान के फॉरन मिनिस्टर ने इंडियन डिप्लोमैट को बुलाया और उन्होंने कहा जी कि हम अब बड़ा स्ट्रांगेस्ट वर्ड्स में इसको कंडेम करते हैं जो आपने प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम उनके खिलाफ आपके ऑफिशियल्स ने बातें की, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये बहुत ही हर्टफुल किस्म का ये कमेंट्स हैं और चीजें हैं और ये मुसलमानों की प्रोसिक्यूशन और जो उनकी रिलीजियस फ्रीडम्स हैं उनके ऊपर ट्रैम्पल करने की कोशिश की है। अच्छा जी, इसके ऊपर तो हिंदुस्तान भड़क गया, उसने कहा जी तुम अपने खुद के मामलात जो हैं उनको देखो, हमारे मुल्क में तो ह्यूमन राइट्स को बहुत ज्यादा जो है वो सहायता दी जाती है, तुम्हारे मुल्क में ह्यूमन राइट्स की जो है ऐसी तैसी भेजी जाती है, तो तुम जो है हमें सबक देने की, पाकिस्तान को कहा तुम हमें सबक देने की कोशिश ना करो, तुम अपने मुल्क के जो है मामलात को दुरुस्त करो। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह उन्होंने कहा जी कि ये जो तुम प्रोपोगेंडा करने की कोशिश कर रहे हो ना, पाकिस्तान को कहा कि ये जो तुम हमारे खिलाफ प्रोपोगेंडा करने की कोशिश कर रहे हो, डिसहार्मनी हमारे मुल्क में पैदा करने की कोशिश कर रहे हो, तुम अपने मुल्क के ऊपर जरा थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर लो। अच्छा जी, इसी तरह फिर उसके बाद अफगानिस्तान ने भी किया, तो उसके ऊपर भी इंडियन गवर्नमेंट ने कोई ऐसा रिएक्शन नहीं शो किया, तो अब वही पाकिस्तान के खिलाफ आपने इतना रिएक्शन क्यों शो किया, दैट इज अवर क्वेश्चन, क्योंकि पाकिस्तान के साथ आपकी वैसी ट्रेड नहीं है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे है। ठीक है जी, तो जनाब ऐसे है, तो ये हुआ। अच्छा, अब जब ये सारा मसला चला तो राहुल गांधी जो हैं वो बड़ा भड़क गए, राहुल गांधी भी, उन्होंने कहा कि जिस दिन से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है उस दिन से इस मुल्क के जो हैं मामलात खराब हैं और इस मुल्क के अंदर जो है कॉन्स्टेंटली एक जो सेक्टर है उसको टारगेट किया जा रहा है, और अगर हिंदुस्तान को प्रोग्रेस के पाथ पे चलना है तो उसको लव, ब्रदरहुड, हार्मनी का मैसेज देना पड़ेगा। जो इंटरनल हमारी रिफ्ट्स थी वो तो थी, अब डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर भी फॉल आउट इंडिया का शुरू हो गया है, और ये लोग जिनको आपने नाराज किया है ये तो जो थे इंडिया के बहुत ही मतलब है लॉन्ग टर्म एलाइज थे, और ये बीजेपी की शेमफुल बिगट्री जो है ये जो इंडिया का जो ग्लोबल स्टैंडिंग है उसको ये डैमेज करेगी, क्योंकि इसके ऊपर हमने आपको भी बताया ही है कि कुवैत, कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, ये सब जो हैं इन्होंने बहुत ज्यादा रिएक्शन शो किया था। तो गांधी जी ने कहा कि 87 बिलियन US डॉलर्स की ट्रेड है इंडिया की अरब कंट्रीज के साथ, तो इसको कहीं ऐसा ना होए कि ये डैमेज हो जाए। तो बहुत ज्यादा उन्होंने आज जो है बीजेपी की गवर्नमेंट को किया जी खींचा है जी, ऐसे है, तो काफी भड़के हुए हैं लोग, तो अब देखेंगे आगे क्या होता है। वरल जी होता तो कुछ भी नहीं है, बोल बाल के चुप कर जाते हैं और फिर जो है वो ट्रेड शुरू कर देते हैं इंडिया के साथ। अच्छा जनाब, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट है, और आज जून 6 को 38th एनिवर्सरी थी ऑपरेशन ब्लू स्टार की। अगर आपको पता हो कि एक खालिस्तान की मूवमेंट चली थी पंजाब के अंदर कि जिसमें कहा गया था कि जी पार्टीशन के वक्त हमको कहा था हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने कि आप हमको एक अलहदा अपना इलाका देंगे, लेकिन आपने दिया नहीं, उसके ऊपर कुछ लोग खड़े हो गए थे, और फिर ये बहुत जो है इंडियन गवर्नमेंट ने इसको खत्म किया था और गोल्डन टेम्पल के अंदर फिर कुछ लोग जाके बैठ गए थे और फिर काफी लड़ाई हुई। अगर आपको पता है हिस्ट्रीज की ऑपरेशन ब्लू स्टार की, तो वो आज जनाब वहां पे आज उसकी एनिवर्सरी 38th एनिवर्सरी मनाई जा रही थी, तो वहां पे अकाल दस्त के जत्थेदार थे और बहुत से और भी लोग थे जो कि प्रो खालिस्तानी स्लोगन्स जो है रेज कर रहे थे खालिस्तान जिंदाबाद के, और वहां पे इन्होंने जो है अकाल दस्त के जत्थेदारों ने कहा कि सिखों को ट्रेडिशनल ट्रेनिंग देने की जरूरत है और उनको अपने पास मॉडर्न आर्म्स जो है वो चलाने आने चाहिए, उनके पास होना चाहिए। उनकी जो आज टी शर्ट्स भी उन्होंने पहनी हुई थी, इनके जो लीडर थे जिनको के मार दिया गया था जरनैल सिंह भिंडरा वाले, उनकी पिक्चर्स थी उसके ऊपर, और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है उसने वो आज स्वरूप वो दिखाया, वो जो आपको पता है ना वो होली वॉल्यूम एक जो गुरु ग्रंथ साहब का है जिसको के गोलियां लगी थी, वो आज दिखाया कि जिसको 1984 में बहुत ज्यादा मिलिट्री के एक्शन के बीच में आके गोलियां लगी थी वो दिखाया गया। तो यहाँ पे जो ज्ञानी हरप्रीत सिंह हैं अकाल तख्त के जथेदार, उन्होंने कहा जी के पंजाब के अंदर मेरे बहुत सारे कंसर्न्स हैं कि बहुत ज्यादा मस्जिदें और चर्च बनते जा रहे हैं और यहाँ पे जो है ये सिखी को खत्म करने की एक कोशिश की जा रही है, तो जितने भी सिख यूथ है इनको चाहिए कि अब ये सिख फेथ को जो है आगे बढ़ाएं और गांव गांव में जाएं और जाके सिखी को बढ़ाएं और अपने रिलीजन जो है इसको मजबूत करें। पाकिस्तान के अंदर जो जी फाइनेंस मिनिस्टर है, अगेन उनका क्या नाम है, फिर मैं गलत बोलूंगी फिर आपके, मुफ्ते इस्माइल जो हैं, उन्होंने कहा जी कि ये वीकेंड के ऊपर कुछ खबरें आ रही थी कि मुल्क के अंदर इमरजेंसी लगाई जाएगी, कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी मुल्क के अंदर नहीं है, पेट्रोल की क्राइसिस जो है प्राइसेस हालांकि दो दफा ऊपर की जा चुकी हैं और अब वो जो है 209.86 को हिट कर रही हैं, और उन्होंने कहा इसके अलावा जो है पेट्रोलियम की प्राइसेस भी बहुत ऊपर चली गई हैं, लेकिन वो कह रहे हैं जी कि पीएम साहब जो है शहबाज शरीफ वो कुछ दिनों में ऑस्टेरिटी मेजर्स जो है वो अनाउंस करेंगे और हमको ये सब इसलिए करना पड़ा है क्योंकि आईएमएफ का प्रोग्राम हमको लेना था, तो इसलिए प्राइसेस जो हैं ये इतनी ज्यादा ऊपर की हैं। इसके अलावा जो नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने भी प्राइसेस जो हैं वो 7.9078 पर किलोवाट के हिसाब से ऊपर की हैं, और ओग्रा ने जो है वो भी गैस की प्राइसेस को 45% फॉर नॉर्दर्न गैस ऊपर करने के लिए कहा है, 44% सुई सदर्न गैस को जो है कहा है प्राइसेस ऊपर करने के लिए, लेकिन मुफ्ती इस्माइल साहब का कहना है कि कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं है मुल्क के अंदर। ठीक है जी आमिर साहब, जरा थोड़ी सी वो एक स्लाइड हमें दिखाओ जो कि ये सारे बाहर आए थे और उन्होंने कहा था जी मुल्क के अंदर बड़ा तूफान मच गया है और बड़ी महंगाइयां हो गई हैं, तो इमरान खान के जमाने में जो पिछली गवर्नमेंट के जमाने में वो जो चल रहे थे किस किस जगह पे टेक्सटाइल खड़ी थी, किस जगह पे जीडीपी था, वो जरा थोड़ी सी दिखाएं जरा, ये आईएमएफ की सारी वो आई थी बहुत सारी डिटेल्स, तो अगर आप हमें दिखाएं वो स्लाइड्स, तो ये देखें जी पाकिस्तान की मीट प्रोसेसर जो है वो 2.2 मिलियन जो है एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर्स आए थे मिडल ईस्ट से, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ था, कभी इतने ज्यादा 2.2 मिलियन यूएस डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कभी नहीं हुए थे। अच्छा जी दिखाते जाएं आमिर। अच्छा उसके बाद ये जो फर्स्ट एवर एजुकेशन सिटी जो साउथ वजीरिस्तान में बनाया गया था ये बिल्कुल अनथिंकेबल था, क्योंकि आपको पता है यहां पे कॉन्स्टेंटली लड़ाई हो रही थी और यहां पे जो था बच्चे बगैर एजुकेशन के फिर रहे थे, तो यहां पे गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं यहां पे एजुकेशन जोन्स जो है हमको एस्टैब्लिश करने की जरूरत है, जो कि की गई थी, जिनको कहा गया था कि इन बच्चों को मेन स्ट्रीम के अंदर आप लेकर आए। अच्छा जी इसको खत्म कर दिया गया। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स टू यूएस 40.27% जो है उससे ऊपर गई थी और 5 बिलियन को 9 मंथ्स में जो फिस्कल लास्ट ईयर था उसको वो टच कर रही थी, जो कि अब जाहिर है कि अब हौले हौले जो है अब नीचे आएंगी, तो ये भी पहली दफा हुआ था। इसके अलावा जो बहुत ज्यादा क्लाइमेट का जो मसला पैदा हो गया था सारी दुनिया में, उसमें ये जो बिलियन ट्रीज लगाए थे उसकी वजह से फॉर द फर्स्ट टाइम ऑलिव जो है ऑलिव्स होने यहां पे शुरू हो गए थे, हालांकि आपको पता है कि ऑलिव्स जो है दे आर स्पेसिफिक टू द अरब कंट्रीज, वो सिर्फ अरब कंट्रीज में ये ऑलिव्स होते थे, लेकिन यहां पे वो इतने उन्होंने ट्रीज और वो लगाए कि यहां पे जो इंटरनेशनल ऑलिव काउंसिल थी उसने कहा कि आपके मुल्क में एक्चुअली ऑलिव्स हो सकते हैं तो इन ट्रीज में। इसके अलावा जो हमारा टेलीकॉम सेक्टर था जी 6 बिलियन यूएस डॉलर के फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो थी इसके अंदर 4 साल में के अंदर आई थी, और बहुत सारे हम आपको बताते ही रहते हैं कि यंगस्टर्स जो थे इसमें शामिल हो गए थे। पाकिस्तान ने अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग के तमाम रिकॉर्ड्स जो थे वो सारे ब्रेक किए थे, उसकी वजह यह थी कि जब कोविड आया था तो बहुत सारे ऑर्डर्स जो कि बांग्लादेश को दिए गए थे उनकी जो कारखाने थे वो पूरा नहीं कर सकते थे, तो पाकिस्तान के कारखानों को इतना ज्यादा काम मिल गया था कि सिर खुजाने की यहां पे लोगों के पास फुर्सत नहीं थी, खासतौर पे ये बड़े जो सिटीज थे जो इंडस्ट्रियल सिटीज हैं फैसलाबाद एंड कराची, और लार्ज स्केल यहां पे मैन्युफैक्चरिंग जो थी और 3-3 शिफ्टों में यहां पे लोग जो हैं वो काम कर रहे थे, एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगेन वॉज हिटिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स। अच्छा जनाब उसके अलावा पाकिस्तान ने 7.16 मिलियन फोन्स जो हैं फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ 2022 में ये बनाए थे। आप सोचें जरा कि इतनी ज्यादा ये जो है डिजिटल जो इकोनॉमी है उसके अंदर पैसा जो आ रहा था उसके अंदर मोबाइल फोन्स का कितना बड़ा हिस्सा है, आप देखें कि मोबाइल फोन्स। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपनी जो कार कंपनीज हैं उन्होंने ये देखें 4 बिलियन रुपीज के जो अंडर न्यू ऑटो पॉलिसी जिसके अंदर इनको बहुत सारी सहूलतें दी गई थी वो इन कंपनीज ने जो थे वो कस्टमर्स को रीपे किए थे। और ये आप देखें कि इसके अंदर और भी जो हम आपको बताते रहे थे कि नई नई कंपनियां जो वो भी आ रही हैं, जिसमें कि हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान की फर्स्ट लोकली असेंबल्ड व्हीकल जो है वो भी सामने आ रही है। तो ये था। और इसके अलावा जो है हमारी जो पाकिस्तान ने 1.9 बिलियन यूएस डॉलर के आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट किए थे, जिसमें कि ये हमारे सारे यंगस्टर जिनके बारे में हम बार बार बताते हैं और उनको साहब को माजिद भाई हमने वैसे बहुत कहा, ये जो डिजिटल इकोनॉमी चलाते थे ना इमरान खान की, कि आप आओ तो बस वो कहते हैं कि नहीं मेरा दिल बहुत टूट गया मैं नहीं आना चाहता, वरना वो आपको बताते एक्चुअली कि उन्होंने आईटी के सेक्टर में पाकिस्तान में क्या काम किया। जबकि इमरान खान आए थे तो उन्होंने कहा था कि आईटी में हम बहुत ज्यादा कमा सकते हैं। तो ये था। और ये देखें रीजनल एक्सपोर्ट्स जो है हमारी 23.5% से राइज की थी और इन 9 मंथ्स हमने पाकिस्तान ने 3.4 बिलियन यूएस डॉलर्स कमाए थे। तो ये जी सारा कुछ जो था ये चल रहा था। बहरहाल जी अब ये सारा सिस्टम अब डीरेल चुके हो चुका है, तो अब जाहिर है इसको और फिर चलने में ट्रैक पे आने पे अब काफी टाइम लगेगा। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं जी, उन्होंने कहा है जी कि उन्होंने बड़ा ही एक इनोवेटिव तरीका बताया। उन्होंने कहा है कि काम कम करो, अगर आपकी ऑयल की प्राइसेस बहुत बढ़ गई है ना तो काम कम करो। काम कम करो, गाड़ी कम चलेगी, पेट्रोल कम खर्च होएगा, ठीक है जी। उन्होंने कहा है जी कि स्टार्टिंग फ्रॉम हाफ डे फ्रॉम फ्राइडे सैटरडे संडे जो है आप हाफ डे फ्राइडे काम करें और सैटरडे संडे को आप छुट्टी करें, तो 4.5 दिन जब आप काम करेंगे तो आपकी जो है पेट्रोल बहुत बचेगी, ठीक है जी। तो ये इन्होंने जी प्रपोजल दी है।
तो वही बात होगी ना कि खाना अगर महंगा हो गया, हाँ, तो तीन
ना खाएं, दो वक्त खाएं दबा के खाएं, लेकिन दो वक्त खाएं
आप, हाँ, तो आपकी ग्रोसरी के बिल,
हाँ,
कम
ग्रोसरी का बिल कम हो जाएगा। तो वो कहते हैं जी हाँ मैं ये भी कहता हूँ चलो एक घंटा और बढ़ा लो, तो लेकिन यानी कि आप 8 घंटे करते हैं, आप 9 घंटे कर लें, फैन लोग तो 14-14 घंटे काम कर रहे हैं जिनकी अपने बिजनेसेस भी हैं दिन में, तो आप कह रहे हैं 1 घंटा बढ़ा लें यानी 9 घंटे कर लें, तो फिर आप समझते हैं मुल्क बड़ा तरक्की करेगा, वाह जी वाह क्या बात है, यानी पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो लंगर खाने फिर आपने जो है वो कैसे चल रहे थे, ये वजीरस्तान टाइप की जगहों के ऊपर ये कैसे स्कूल चल रहे थे, ये कैसे जो है वो सारी ये चल रही थी, वो जो लोगों को जो गरीब घरों को 14,000 रुपीज दिए जाते थे, सेहत स्कीम कैसे चल रही थी, स्कॉलरशिप्स कैसे चल रहे थे, अगर मुल्क में पैसा ही नहीं था। आपने तो सबसे पहला काम ये किया, आपने तो ये गरीबों की सारी चीजें आते सारी बंद कर दी हैं। अनाउंस क्या किया, मुझे तो इतनी हंसी आई, वो तो अभी मैंने खबर इधर बताई नहीं है कि हम जी जो गरीब जो फैमिलीज हैं उनको हम 2,000 रुपीज जो है पर मंथ देंगे। और भाई प्रीवियस गवर्नमेंट 14,000 रुपए दे रही थी, तो आप क्या तीर मार रहे हैं हम 2,000 देंगे, मतलब व्हाट अ जोक इन दिस, यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस कंट्री एंड नोबडी, देयर आर नो चेक्स एंड बैलेंसेस। मुझे समझ नहीं आता कि कोई इनके कोई पूछने वाला है इनको कि नहीं है,
नहीं
कि भाई साहब क्या आप कर रहे हो। अच्छा जी, आज जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा थे वो आज नस्ट के अंदर एड्रेस कर रहे थे और कह रहे थे कि भाई ये जो आप बिलावजह नेशनल स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम को हर कोई आके एतराज उसके ऊपर करता जाता है, ये अननेसेसरी कमेंट्स ना दें, पाकिस्तान जो है वो कोई भी अपनी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है और ये जो इसका फुल स्पेक्ट्रम डिटेरेंस पॉलिसी है के ऊपर बिलीव करता है। तो इसलिए मैं लोगों को कहता हूं कि जिनका ताल्लुक नहीं है इस चीज के साथ उसके जो इसके ऊपर कॉमेंट ना करें और बिला वजह की हीट जो है वो जनरेट ना करें। गवर्नमेंट जो है जी पाकिस्तान की वो कह रही है कि हम चूंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है तो हम आप सोच रहे हैं कि आपको हम तीन ऑप्शंस हैं हमारे पास कि गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तनख्वाहें जो हैं बढ़ानी चाहिए 5 से लेके 15% तक। वो जो अपकमिंग बजट है उसके अंदर वो कहते हैं कि हम जो हैं 25,000 तक ये सैलरीज बढ़ाना चाहते हैं, ग्रेड 1 से 9 को 5 to 10%, ग्रेड 20 से 22 को 10 to 15%, और पेंशन जो हैं उनको भी 5 to 10% जो है वो बढ़ाया जाएगा। शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है जी, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इस्लामाबाद के अंदर अपने बाकी दूसरे पीएमएलएन के लीडर्स के साथ और उन्होंने कहा है जी कि लोड शेडिंग जो है अब कल से सिर्फ 3.5 घंटे पर डे रह जाएगी और ये जो बिजली का शॉर्टफॉल था पीटीआई इसकी जो है रिस्पॉन्सिबल है। हम जो है डिमांड एक्सीड हमारे मुल्क में कर गई 25,000 मेगावाट से और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो थी 17,000 मेगावाट हो रही थी, तो अब हमको नेक्स्ट थ्री वीक्स में हम 21,000 मेगावाट को टच करेंगे, और हमने ऑयल भी इंतजाम कर लिया और एडिशनल मनी भी, और हम कोल भी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से अब आने वाले दिनों में जून 30th के बाद ये सिर्फ जो है 1.5 से 2 घंटे की रह जाएगी। आमिर साहब ये जरा दिखाएं हमारा वो एक अखबार की कटिंग दिखाएं, ये पाकिस्तान में कब से लीडर्स कह रहे हैं कि भाई ये जो लोड शेडिंग है ये खत्म हो जाएगी। ये जरा हमारी मेरे ख्याल में 1986 की डॉन की कटिंग है, ये जरा डॉन की कटिंग दिखाएं। तो अच्छा ठीक है, अभी हमारे पास नहीं है, वो निकालते हैं आमिर, तो हम आपको दिखाते हैं। ये 1986 है, जो वो महबूबुल हक साहब थे ना जी, उस जमाने से ये कह रहे थे हमने बिल्कुल जो है ये खत्म कर देनी है लोड शेडिंग इस मुल्क से। तो अब ये देखें लोड शेडिंग प्रॉब्लम टू बी रिजॉल्व बाय 1986 है जी। okay. ये डॉन न्यूज की ये एक कटिंग है। तो अब आप देख लें कि ये उस जमाने से ये सारे लीडर हजरात जो हैं ये बार बार कहते जा रहे हैं। और एनीवेज अच्छा जी, ये पीटीआई ने अनाउंस किया है इनके डिफरेंट जो लीडर्स हजरात हैं, एक तो शेख रशीद अहमद जो कि इंटीरियर मिनिस्टर थे पिछली गवर्नमेंट में, इसके अलावा चौधरी फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने भी, और भी कुछ जो हैं जो पीटीआई के लीडर्स हैं उन्होंने कहा है जी कि इमरान खान साहब जो कि आजादी मार्च के बाद अभी तक पिशावर में बैठे हुए थे, वो बनी गाला वापस आ रहे हैं क्योंकि वहां पर कोर कमेटी का मीटिंग होने वाली है। तो उसके ऊपर जो है राणा सनाउल्ला ने कहा जी आया नू आओ, ये जो जो सिक्योरिटी आपके हमने घर पे लगाई हुई थी अब यही सारी सिक्योरिटी जो है आपको अरेस्ट करने के ऊपर लगाई जाएगी जैसे ही आपकी जो है बेल खत्म हो जाएगी, और क्योंकि आपके ऊपर 2 dozen केसेस हैं सेडिशन के, राइटिंग के, स्प्रेडिंग केओस एंड आर्म्ड अटैक ऑन फेडरेशन। हाँ जी, तो ये आपके ऊपर सारे चार्जेस हैं, तो आप आओ तो फिर हम आपको जो है वो पकड़ेंगे। तो अब जी देखेंगे क्या होता है। अच्छा इसके ऊपर तो जी जाहिर है कि लोग बड़ा भड़क गए हैं, कुछ लोगों ने कहा कि अगर आपने उसका बाल भी बांका किया तो हम सुसाइड बॉम्बिंग शुरू कर देंगे और पता नहीं क्या क्या कुछ, तो ये तो बड़ी खतरे में नाक बात है। अच्छा जी, सिद्धू मूसेवाले का जो डेथ है वो तो अब हर रोज नया 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 ही रुख देखती जा रही है। जो बड़े मशहूर पंजाबी सिंगर थे जो हमने को बताया था, 27 इयर्स एज एंड वेरी सैड, माँ बाप का एक ही एक बच्चा था और गैंगस्टर्स ने आके इसको गोली मार दी थी। अब एक सीसीटीवी जो है May 29 की वो सामने आई है और उसमें देखा जा रहा है कि एक लड़का, एक गैंगस्टर जिसका नाम केकड़ा है, वो केकड़ा जो है अपने एक साथी के साथ आया हुआ था और वो इसकी पार्टी में आके इसके घर पे बल्कि आया हुआ था और 45 मिनट्स तक इसके घर में मेरा सेल्फीज लेता रहा। तो इसने अलेजली, पुलिस कहती है कि इन्फॉर्म किया शूटर्स को कि ये मूसेवाला जो है अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में भी नहीं आ रहा, थर लेके आ रहा है और अपने साथ गनमैन भी नहीं ला रहा है। तो इसको पुलिस कहती है जी कि इस केकड़े को हमने कलन वाली टाउन हरियाणा से जो है हमने किया है क्योंकि इसने फैसिलिटेट किया उनको सारों को जिन्होंने सिद्धू मूसेवाले को मारा। महाराष्ट्र होम अफेयर्स के जो डिपार्टमेंट है जी उन्होंने सलमान खान की अब सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है क्योंकि हमने आपको वीकेंड में बताया था कि जसेम बिश्नोई ग्रुप जो है उसने एक दफा जो है सलमान खान को धमकी दी थी कि भाई हम आपको मार सकते हैं। तो अब क्या हुआ है कि इनके वालिद साहब जो सलीम खान है वो एक जो पार्क है वहां पे जाते हैं बांद्रा में बस स्टैंड के पास है तो वहां पे ये जाते हैं करने के लिए मॉर्निंग वॉक। तो वहां पे जिस बेंच पे बैठते हैं एक पर्टिकुलर बेंच है वहां पे उनको एक लेटर मिला कि तुम्हें और तुम्हारे बेटे को मार दिया जाएगा। तो ये उन्होंने जी खत फिर दिया पुलिस वालों को। तो अब पुलिस ने सलमान खान जो है उसकी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। इसके अलावा इनके भाई अरबाज और सुहेल खान जो है वो भी देखे गए इसके घर के बाहर और सलमान जो है आईफा अवार्ड्स के लिए गए हुए थे अबू धाबी। तो अब जब वो आए हैं तो अब उनको बहुत ज्यादा सिक्योरिटी दी जा रही है। एंड जनाब एतिहाद अरीना यस आइलैंड अबू धाबी के अंदर आईफा अवार्ड्स हुए 2022, बड़ा ही ग्लैमरस इवेंट था और हमारे जो बॉलीवुड के भाईजान है यानी कि सल्लू भाई उन्होंने जनाब इसको वो किया, होस्टिंग की इसकी, और इनके साथ थे रितेश देशमुख और मनीष पॉल और बड़ा ही जबरदस्त ये देखें जरा आप ये जो एरिना है वहां पे ये जो एतिहाद एरिना है यास आइलैंड का ये यहां पे ये थी और इसके अंदर जो है बहुत सारे जो अवार्ड्स दिए गए कुछ के हम आपको बता देते हैं। एक तो बेस्ट फिल्म कैटेगरी अवार्ड जो थी उसके अंदर हीरो यश चोपड़ा, करण जौहर, पूर्वा मेहता और शब्बीर बॉक्सवाला, अजय शाह, हिमांशु गांधी को शेरशाह के लिए दिया गया। बेस्ट डायरेक्शन कैटेगरी के अंदर विष्णु वराधन को शेरशाह के लिए दिया गया। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल कृति सैनन को मिमी के लिए, म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान फॉर अतरंगी रे, तनिष भागी, जसलीन रॉयल, जावेद मोहसिन, विक्रम मोंतेसर और जानी जो है इनको शेरशाह के लिए म्यूजिक डायरेक्शन में दिया गया। प्लेबैक सिंगर फीमेल अनीस कौर को रतन रातां लंबियां के लिए और प्लेबैक सिंगर मेल जूबियन नौटियाल को भी रातां लंबियां के लिए। बेस्ट स्टोरी अनुराग बासु लड्डू, बेस्ट स्टोरी अडॉप्टेड कबीर खान और बेस्ट डायरेक्टर डेब्यू फीमेल जो है ये शिवांगी वागी फॉर बंटी और बबली और बेस्ट डेब्यू मेल जो है वो आहान शेठी तड़प टू के लिए। तो जनाब ये बड़ा जबरदस्त रंगारंग प्रोग्राम जो है ये अबूधाबी के अंदर हुआ और जनाब एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि बैड इन अ बैड टेस्ट दिस एड वॉज क्रिएटेड इन अ बैड टेस्ट। एक बॉडी स्प्रे है शॉर्ट इंडिया के अंदर, उसका एड दिखा रहे थे कि एक लड़की सामने सुपरमार्केट में खड़ी हुई है, वो कुछ खरीद रही है और उसके पीछे चार लड़के खड़े हुए हैं। वो कहते हैं ये तो हम चार हैं और ये एक ही है, तो ये शॉट कौन लेगा। तो इसके अंदर दुनिया बड़ी भड़क गई है इंडिया में, वो कह रहे हैं कि ये आप रेप को बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि वो लड़के, अब वो लड़की एकदम से जब मुड़ती है तो पीछे वो लड़के जो हैं वो उसको परफ्यूम को उठाते हैं जिसकी एक ही बॉटल रह गई है, लेकिन वो चूंकि लड़की है और वो झुकी हुई थी और उसके ऊपर ये उन्होंने, तो ये इस पे काफी बॉलीवुड के भी जो सितारे हैं प्रियंका चोपड़ा, ऋचा चड्ढा, फरहान खान और ये सारे बहुत भड़क गए। उन्होंने कहा जी कि ये इंतहाई डिसगस्टिंग और शेमफुल है। उसकी वजह ये है कि ये सिर्फ ये एड एक हफ्ते बाद, जो हमने लास्ट वीक आपको बताया था कि एक 17 साल की बच्ची जिसको कि मर्सिडीज गाड़ी के अंदर पांच लड़कों ने गैंग रेप किया था, उसके फौरन बाद ही ये एड आ गया। तो अब उन्होंने कहा कि ये इंतहाई बेहुदा है। तो बहरहाल जी इन्होंने दे हैव पुल्ड दिस एड ऑफ एयर और माफी भी मांगी है इसके
क्रिएटर्स। बट इन द मीन टाइम वो शॉट को कितना पॉपुलैरिटी मिल गई,
मिल गई, हाँ बहुत पॉपुलैरिटी
वो एड से इतना नहीं मिलेगी इतनी इस
कंट्रोवर्सी से मिल जाएगी,
कंट्रोवर्सी से
या। तो बस ये हुआ। अच्छा जनाब, रॉजर फेडरर के जो कोच हैं इवान जूबिक, उन्होंने कहा है कि यहां पे जब आपको पता ही है बड़ी ये खुश हो गए थे 14th फ्रेंच ओपन जब इन्होंने फ्रांस में रोनाल्ड गैरोज में जीता है, सॉरी जो जो इन्होंने हैं तो ये रॉजर फेडरर के कोच, लेकिन ये राफेल नडाल ने जो जीता है 14th फ्रेंच ओपन, तो उसके ऊपर इन्होंने कहा कि ये जो आपका एरिना है यहां पे जहां पे कि ये मैच हुआ था उसका नाम है फिलिप कार्टियर, तो उसको चेंज करके आप राफेल नडाल जो है वो आप नाम रखें।
ठीक है, इससे तो, किसी ने नहीं जीते।
हाँ, किसी ने नहीं जीते। तो वो कहते हैं जी कि ये बहुत जबरदस्त इसका जो है, और इसी जगह पे वो कहते हैं इसी तारीख को इसी जगह पे इसने अपना पहला मेडन ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता था। तो इसलिए जो है ये है। तो मतलब बड़ी हैरत लोगों को ही कि रॉजर फेडरर के ये कोच हैं और इन्होंने बात की है उसके लिए राफेल नडाल के लिए, तो बड़ा लोगों ने अप्रिशिएट किया। लेकिन जाहिर है कि वो उसने भी जब
ये वैसे नडाल जो है तो मना कर दिया है कि वो मोस्ट प्रॉब्ली ही इज नॉट गोइंग टू प्ले विंबलडन।
हाँ हाँ, इसलिए क्योंकि उनको इंजरी आ गई है, फिर से इंजरी
के साथ साथ जो रशियन टेनिस प्लेयर्स के साथ जो उन्होंने सलूक किया है तो उसके बेस पे वो कहते हैं
हाँ, नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहते थे कि स्पोर्ट्स के अंदर ये सब नहीं होना चाहिए,
स्पोर्ट्स में ये सब चीज़
ये नहीं होना चाहिए। एंड जनाब बड़े फटे चके जो रूट ने भी, हमने आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि उन्होंने कहा था कि अब मैं इंग्लैंड टीम का कैप्टन नहीं रहूंगा, मैं अपनी गेम पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूं। तो ये जो है न्यूजीलैंड के साथ इंग्लैंड के मैचेस हो रहे थे और जो फर्स्ट टेस्ट हुआ है उसके अंदर इन्होंने जी जो बनाए हैं 115 नॉट आउट, उसकी वजह से इंग्लैंड जीता है और रूट जो है 14th बैट्समैन है और सेकंड जो है ब्रिटिश प्लेयर हैं हु हैज रीच 10,000 टेस्ट रन्स। तो ये इनकी 2600 थी, तो ये उसके ऊपर जी बड़े खुश हुए हैं। वर्ल्ड नंबर वन ईगा स्वीटेक जो कि सिर्फ अभी 21 इयर्स की हैं, उन्होंने जनाब डिफीट किया है अमेरिकन टीनेजर, वो भी बड़ी छोटी सी हैं, कोको गॉफ जो कि 18 इयर्स की हैं, उनको फ्रेंच ओपन में हराया है और अपना ये सेकंड फ्रेंच ओपन जो है वो जीता है 3 साल के अंदर। एंड शी हैज बिकम नंबर वन, क्योंकि आपको पता ही है कि ऑस्ट्रेलिया की एश बार्टी जो थी उसने मार्च में अचानक से अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था। शी हैज वन 35 कंसेक्यूटिव मैचेस एंड शी हैड द लॉन्गेस्ट अनबीटन स्ट्रीक सिंस वीनस विलियम्स इन 2000। और हमारी जी बच्चियां भी कुछ पीछे नहीं है, आपको पता ही है कि श्रीलंका के साथ जो हमारी क्रिकेट टीम लड़कियों की खेल रही थी यहां पे साउथ एंड क्लब में कराची में, तो 2-1 से जो है ये जीती हैं और आखिरी मैच जो था वो श्रीलंका के लिए कंसोलेशन रहा क्योंकि आखिरी मैच वो जीत गई। इनकी कैप्टन जो है चमारा का अथा पटाटू, उन्होंने जो है बड़ा जबरदस्त 101 रन्स बनाए 85 बॉल्स पे। बहरहाल पाकिस्तान जो है 2-1 से ये सीरीज जीता और अब पाकिस्तान जो है आईसीसी की, यानी ये मैं बात जरूर बताना चाहती हूँ कि आईसीसी की जो विमेंस चैंपियनशिप 2022-25 का जो साइकिल है अब उसके ऊपर अब ये इस वक्त टॉप पे बैठी है पाकिस्तान की विमेंस टीम। ठीक है जी, एंड एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट जी वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम। इट अराइव टुडे एज ऑफ टुडे मंडे, यानी के इट अराइव टुडे टू प्ले 3 ओडीआईज और ये 14 साल के बाद आए हैं जी। इधर मुल्तान में ये पहुंचे हैं, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में अब ये खेलेंगे और यहां पे ये मैचेस जो हैं जून 8 से शुरू होंगे, 8, 10 एंड 12 को खेले जाएंगे और वेस्ट इंडीज की टीम को लीड कर रहे हैं उनके स्किपर निकोलस पूरन। तो आज इनको यहां पे पाकिस्तान में वेलकम किया गया है।
ऑल द बेस्ट।
यस,
ऑल द बेस्ट जी।
जी जी जी।
यू आर लिसनिंग टू WTUR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
रियल एस्टेट की दुनिया में काबिले भरोसा और बाएतमाद नाम
सहरिंग नरक्षा और हुमायूं खान।
अगर आप अपना घर बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं या किराए पे लेना और देना चाहते हैं या प्री कंस्ट्रक्शन में बहुत ही थोड़ी रकम से एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम आपको बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छे पैसे बनवाने का तरीका बता सकते हैं।
तो देर किस बात की, फौरन कॉल करें टीम एचएस को, नंबर है 6476719249 6472055907।
सिटी ऑफ ब्रैम्पटन दी सालाना फार्मर्स मार्केट वापस आ गई है जिसनु प्रेजेंट करेंगे मेरिडियन क्रेडिट यूनियन वाले 2022 सीजन जो के शुरू हो रहा है जून 11 तो ए हर हफ्ते 8 बजे तो लेके 1 बजे तक अक्टूबर 8 तक जारी रहेगा, चाहे बारिश आए चाहे ना मार्केट ते साड़ी चलती रहेगी जो के लोकेटेड है वेलिंगटन स्ट्रीट और गेज पार्क विच। इसका मजा उठाने वास्ते और अपने पसंदीदा किसाना और वेंडर्स नु मिलन वास्ते तैयार हो जाओ। ज्यादा जानकारी वास्ते brampton.ca/market नु विजिट करो ते आओ फिर मिलने आ इस मार्केट विच।
कहते हैं कि माया को खींचे माया करकर लंबे हाथ,
हैरी सॉन द मेजेस्टिक मॉर्गेज के साथ रेजिडेंशियल कमर्शियल मॉर्गेज रीफाइनेंसिंग आपने करनी है, किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है, सारे बैंकर्स और लेंडर्स के साथ डीप ताल्लुक आते हैं इनके, आपको फाइनेंसिंग का बंदोबस्त दिया जाएगा और चार्जेस भी कोई नहीं देने पड़ेंगे। हैरी सॉन जी बड़ी कमाल की तिकड़म लड़ा सकते हैं, बस आप कॉल कर लीजिए और पैसे का रेंज हो जाएगा $228 से $1,000 महीना कैसे बचा सकते हैं। कॉल हैरी सॉन Now 6472281000 Harry Sond of Majestic Mortgages।
एशियन फूड सेंटर इंडियन कैनेडियन साफ सुथरी ग्रोसरी दे नाल
कारकार विच मशहूर हो चुकिया एशियन फूड सेंटर हमेशा सस्ते रेट ते वधिया सेवावां देण लई वचनबद्ध है।
अपने एरिए विच पेंदे किसी भी स्टोर विच जाओगे तो जरूर बचत पाओगे।
वधेरी जानकारी लई एशियन फूड सेंटर दा इक्को इक नंबर याद रखो 416-740-3200।
एशियन फूड सेंटर 416-740-3262। एशियन फूड सेंटर।
कहीं मॉर्गेज नहीं मिल रही, झटपट मॉर्गेज दिला के सारी मुश्किल कर देंगी आसान। 11 साल से ज्यादा तजर्बा और एक भरोसामंद नाम, हर किस्म की रेजिडेंशियल या कमर्शियल मॉर्गेज के लिए मॉर्गेज अलायंस की जैस्मिन परमार से राब्ता करें। रीफाइनेंसिंग ऑप्शंस, रिन्यूअल ऑप्शंस, मॉर्गेज डिफिकल्टीज, डाउन पेमेंट इश्यूज, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्राइवेट फंड्स, सेकंड मॉर्गेज के लिए कॉन्टेक्ट करें मोस्ट ट्रस्टवर्दी जैस्मिन परमार से। नंबर टू कॉल 6479235659 6479235659। लाइसेंस नंबर 10530।
दांतों के इलाज के लिए डॉक्टर ने बिल बहुत ज्यादा बता दिया, सोचती हूँ बैक होम जाके दांतों का मुकम्मल इलाज कराऊं।
छोड़ो भाई, किंग बेस्ट स्माइल डेंटिस्ट्री को विजिट कर लो। दांत निकालना हो, क्राउन्स, ब्रिजेस, डेंचर्स, इम्प्लांट्स, बच्चों के दांतों का मुकम्मल इलाज, रूट कैनाल ट्रीटमेंट और नए पेशेंट के लिए फ्री इलेक्ट्रिकल टूथ ब्रश भी है। कंसल्टेशन इज एब्सोल्युटली फॉर फ्री।
पर जाना कहाँ है?
288 किंग स्ट्रीट वेस्ट हैमिल्टन में 905-521-0540 905-521-0540।
अरे भाई हम जानते हैं कुछ चीजों के लिए बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ता है, जैसे रेड लाइट सिग्नल, बैंक की लाइन और हर रोज वो कॉफी की लाइन। मगर हम करते हैं आपके अपनों के बैंक अकाउंट्स पे मनी ट्रांसफर इन सबसे जल्दी, यानी रिसीव कटी नहीं और मनी ट्रांसफर डन सिर्फ और सिर्फ एबल एक्सप्रेस की रिलायबल सर्विस के साथ। पाकिस्तान में डेडिकेटेड कस्टमर सर्विसेज, हमारी पहचान एबल एक्सप्रेस। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन कॉल नाउ 416-230-4444 एबल एक्सप्रेस।
चलो कहीं दूर ये समा छोड़ के।
अरे भाई कहाँ चल दिए?
लराची बाई नोमान एजाल, जहाँ मिलेंगे आपको पाकिस्तानी ऑथेंटिक लाहौरी खाने।
सच?
जी हाँ, गोलगप्पे, पापड़ी चाट से लेकर बारबेक्यू आइटम्स, बिरयानी, लाहौरी चिकन और गोट कढ़ाई, बीफ नहारी, चना मसाला और हलीम।
और बच्चों के लिए?
बच्चों के लिए चिकन सैंडविचेस, चिकन विंग्स, बीफ बर्गर और फ्राइज।
और मीठे में क्या होगा?
हाँ, पिस्ता आइसक्रीम, लाहौरी कुल्फी, लाहौरी कुल्फी फालूदा, रबड़ी, गुलाब जामुन और गाजर का हलवा।
कहाँ है ये लराची बाई नोमान एजाज?
10220 Derry Road, Milton. Reservation या order के लिए call करें 365-877-8252.
Pinky, Bablu, चलो हम भी चलते हैं।
सब पे करम एक सा मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ।
करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ।
WTOR, Youngstown, Toronto, now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Birosh Broadcasting Corporation and operates on an assigned frequency of 770 kHz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world in words and in music.